लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहां तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, कोरोना महामारी के वर्तमान हालात ने हमें डर, शंका, चिंता और विभिन्न तरह की अनिश्चितताओं से भर दिया है। मानव के रूप में बेफिक्र और मस्त मौला जीवन जीने की प्रवृत्ति में इस भांति हम देखें तो थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि हम अपने चारों ओर अदृश्य जीवन के शत्रु मौत को मंडराता हुआ पाते हैं। कोरोना वायरस एक अनचाहे अतिथि के रूप में हमारे घर कब, किसके द्वारा और कैसे घुस जाए हमें पता तक नहीं चलता। इसके पहले कि हमें इसका पता चले और हम इसकी रोकथाम हेतु कुछ पहल करें, कई परिवारों ने अपने प्रिय जनों को ही खो दिया है। श्रोताओं, महामारी की यह स्थिति मानव जीवन में व्याप्त डर, भय और जीवन की अनिश्चितताओं का हाल प्रस्तुत करती है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा कब क्या होगा। किसी हंसते खेलते परिवार में विपत्तियों का पहाड़ कब टूट पड़े किसी को नहीं पता। लेकिन जीवन की हकीकत यही है कि अपने को शक्तिशाली और कई रूपों में बलवान समझने वाला कोई भी मानव मौत के दस्तक देने पर निसंदेह अपने में काफी जाता है। मृत्यु ही एक ऐसा खतरनाक नाम है जो मानव के संपूर्ण जीवन को हिलाकर रख देता है। डर, भय और शंका की ऐसी परिस्थिति में पास्का का तीसरा रविवार हमारे लिए पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के प्रेम, शांति और साहस में एक नए जीवन का संदेश लेकर आता है, जिसे स्वयं यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के बीच आकर उन्हें देते हैं। वही यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में भी आने की चाह रखते हैं, जिससे हम अपने जीवन की परेशानियों और तकलीफों से निजात पा सकें। आइए तब हम पास्का के तृतीय रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने जीवन में पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति को देखने और उन्हें एहसास करने की कोशिश करें, जो हमें धैर्य में बने रहते हुए डर और शंका नहीं करने को कहते हैं, क्योंकि वे हमारे साथ हैं।
एमाउस से लौटने के बाद उन दो शिष्यों ने चेलों को बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श करके देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भूनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो।
श्रोताओ, मृतकों में से जी उठे यीशु ख्रिस्त हमें विश्वास में मजबूत बने रहने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन के भयभीत क्षणों से बाहर निकल सकें, जो हमारे जीवन को खुलकर स्वतंत्रता में आनंद पूर्वक जीने में बाधक बनती है। यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम अपने में शांति का एहसास कर सकें, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन के अशांति भरे क्षणों में अपनी शांति प्रदान करने आते हैं।
सदा शांति दे दे, हे शांति दाता।
श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिए गए आज के पहले पाठ में हम पौलुस का यहूदियों के बीच यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के घोषणा का एक साक्ष्य सुनते हैं। वे यहूदियों से निडर होकर यह कहते हैं, आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जी लाया है। यीशु ख्रिस्त ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के कारण मार डाले गए, जो मानवीय समाज में व्याप्त पापों के स्वरूप को दिखलाता है। उन्होंने भले कार्य किए जो यहूदियों के नेताओं के लिए ईर्ष्या और द्वेष का कारण बने। उन्होंने फरीसियों और शास्त्रियों की पाखंडता को खुले रूपों में चुनौती प्रदान की, जिसे वे सहन नहीं कर सके। उन्होंने सच्चाई का पक्ष लिया, जिससे समाज के गरीब, दबे, कुचले और तिरस्कृत लोगों को जीवन मिल सके। उन्होंने पापों से घृणा की और पापियों को उनके गिरी हुई परिस्थिति से उठाते हुए जीवन के अधिपति बने, और इस मुक्तिदायी कार्य के बदले पापों से भरे समाज ने उन्हें क्रूरतम मौत की सजा दी। श्रोताओ, संत योहन के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ आज के पहले पाठ को और एक कदम आगे ले चलते हुए कहता है, उन्होंने हमारे पापों के लिए और समस्त संसार के पापों के लिए भी प्रायश्चित किया। हमारे पापों के प्रायश्चित हेतु उन्होंने अपने को अपने स्वर्गीय पिता के प्रति मृत्यु की अंतिम घड़ी तक आज्ञाकारी बना लिया। उन्हें अपमानित किया गया और चुनौतियां मिली, लेकिन वे एक मेमने की भांति हमारे पापों के खातिर अपने में चुपचाप बने रहे। पापों का बदला उन्होंने पापों से नहीं बल्कि प्रेम से देना स्वीकार किया। उन्होंने न केवल पेत्रुस को अपनी तलवार मयान में रखने को कहा, वरन घोर अपमान में भी उन्होंने स्वयं अपनी जीभ को दांतों तले दबाए रखा। इस भांति वे दुखों में भी पिता के प्रति आज्ञाकारी पुत्र बने रहते हुए अपनी आज्ञाओं का पालन करने का साक्ष्य हमें बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से दिया। इस भांति हम दुखों से भागते हुए नहीं बल्कि आज्ञाकारिता में अपने दुखों को सहन करते हुए पिता के प्रति अपने प्रेम की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। श्रोताओ, आज का सुसमाचार हमारे लिए दोनों पाठों का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए धर्म ग्रंथ का मर्म प्रस्तुत करता है, जिसे यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को समझाते हैं। ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों में पापों की क्षमा हेतु पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। मानव जाति के पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, और वे हमें अपने जीवन के डर, भय और सभी तरह की शंकाओं से मुक्त करते हैं। वे हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते और नया जीवन देते हैं। आइए हम मुक्तिदाता पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें, कि वे हमें अपने जीवन की सभी शंकाओं और भय से मुक्त करें, जो हमें सच्ची स्वतंत्रता में प्रेमपूर्ण जीवन जीने नहीं देता है, जिससे हम डर मुक्त होकर ख्रिस्त के सुसमाचार के संदेश वाहक बनते हुए दूसरों के लिए सच्ची स्वतंत्रता और जीवन का कारण बन सकें।
सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता। शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, कई लोग हताश और निराश हो जाते हैं और अपनी समस्याओं के लिए विभिन्न लोगों को दोष देने लगते हैं, किंतु इससे समस्या का हल नहीं होता, बल्कि जीवन अधिक कठिन हो जाता है। संत पापा फ्रांसिस ने 17 अप्रैल के ट्वीट संदेश में जीवन की समस्याओं का समाधान बतलाते हुए कहा, सिर्फ यीशु का प्रेम हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे गहरे घाव को चंगा कर सकता है और निराशा, क्रोध एवं निरंतर शिकायत के हर घेरे से मुक्त कर सकता है। 11वें विश्व सर्कस दिवस पर 17 अप्रैल को वैटिकन ने सर्कस के सभी कलाकारों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं तथा महामारी के कारण संकटपूर्ण स्थिति में सहानुभूति प्रकट करते हुए इसके जल्द खुलने की उम्मीद जताई है। वैटिकन के समग्र मानव विकास हेतु गठित परम धम्म पीठ परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टक्सन ने 11वें विश्व सर्कस दिवस पर सर्कस जगत के संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हेलमट ग्रोसकर्ट को एक पत्र भेजकर सर्कस के कलाकारों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया है। संत पापा के शब्दों में कार्डिनल ने कहा है कि वे सुंदरता के सच्चे शिल्पकार हैं। कार्डिनल ने महामारी के कारण सर्कस की गंभीर स्थिति पर नजर डालते हुए कहा कि पिछले साल से महामारी के कारण यूरोपीय सर्कस कंपनियों को, जो लाखों कलाकारों को नौकरियां प्रदान करते एवं हजारों जानवरों को अपने पास रखते हैं, आपातकाल की लंबी अवधि एवं भीड़ पर प्रतिबंध ने सर्कस उद्योग के अस्तित्व एवं व्यवसाय को ही खतरे में डाल दिया है। इस कला की रक्षा हेतु जिसने 250 वर्षों तक अपनी कला का प्रदर्शन किया है, वयस्कों एवं बच्चों सभी के लिए मनोरंजन का स्रोत रहा है, उससे यूरोपीय संघ एवं प्रत्येक देश से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कार्डिनल ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने परिषद को कोविड-19 पीड़ितों को ध्यान में रखने के लिए कहा है, यह विश्व के स्थानीय कलीसियाओं को सुनने एवं सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मदर्शियों ने महामारी के कारण शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर गौर किया है, जिससे बचने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए गए हैं, जबकि यह समाज की अस्त व्यस्तता का कारण बन गया है। इन उपायों को चंगा करने में लंबा समय लगेगा और काफी कठिनाई होगी, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होना है। कार्डिनल टक्सन ने उदास संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि पलियों और धर्म प्रांतों में कारितास एवं उदास संगठनों के माध्यम से इन घावों पर उदारता के मलहम लगाए जा चुके हैं, और उसने इटली में सर्कस को बचाने के लिए लोगों के आग्रह का प्रत्युत्तर दिया है। परीक्षा की इस घड़ी में जिसने हमें पुनः दिखाया है कि कोई भी अकेला नहीं बच सकता, हमारे तूफान के बीच प्रभु हमें पुनः जागृत होने एवं एकात्मकता को अपनाने का निमंत्रण दे रहे हैं। अमेरिका में एक ऑनलाइन सभा में अमेरिका के महाधर्माध्यक्ष जोश गोम्स ने अमेरिकी कैथोलिकों का आह्वान किया है कि वे राजनीतिक विभाजन को दूर करें और सामाजिक न्याय एवं मानव व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कलीसिया की धर्म शिक्षा को बढ़ावा दें। बृहस्पतिवार को आयोजित वेबिनार में कैथोलिक वकीलों ने भाग लिया, जहां लॉस एंजल्स के महाधर्माध्यक्ष ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। महाधर्माध्यक्ष गोम्स, जो अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में दांते राइट की हत्या के लिए शोक व्यक्त किया। राइट की हत्या रविवार को एक ट्रैफिक पड़ाव पर हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसे रोकने की कोशिश में टेजर का प्रयोग करने के बदले गलती से पिस्तौल चलाया गया।
सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कल 16 अप्रैल को 94 साल के हो गए। वे वाटिकन के मातर इकलेसिया मठ में मई 2013 से रह रहे हैं। हाल के वर्षों की तरह उन्होंने कुछ मेमोरेस डोमिनी के सदस्यों, कम्युनियन एंड लिबरेशन मूवमेंट के कुछ समर्पितों और निजी सचिव महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज गोंसाल्विन के साथ जन्मदिन मनाया। इनका जन्म 16 अप्रैल 1927 को जर्मनी के एक छोटे बवेरियन शहर मार्कटल एमएन में हुआ। 19 अप्रैल 2005 को इन्हें संत पेत्रुस के सिंहासन के लिए चुना गया था। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा 11 फरवरी 2013 को दी और 28 फरवरी से वे सेवानिवृत्त परमाध्यक्ष हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें अपने बड़े भाई जॉर्ज के बिना यह पहला जन्मदिन मनाए, जिनका 1 जुलाई 2020 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पिछले साल 18 जून को बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें अलविदा कहने के लिए जर्मनी की हवाई यात्रा की थी। वाटिकन लौटने के कुछ दिनों बाद भाई जॉर्ज की मृत्यु हुई। मोनसिन्योर गोंस्विन ने वाटिकन न्यूज को बताया कि पिछले साल महामारी के कारण और स्वास्थ्य नियमों के अनुपालन में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने मेहमानों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पोस्ट या ईमेल द्वारा बधाई या संदेशों के कई टेलीफोन कॉल आए। उधर यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम लागू करने के लिए पार्टियों को चेतावनी दी और शांति वार्ता के लिए एक तारीख पर सहमत होने की अपील की, ताकि संघर्ष समाप्त हो सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ब्रीफिंग करते हुए मार्टिन ग्रिफिथ्स ने यमनी सरकार की सेनाओं के बीच लड़ाई के 6 साल के अंत में एक सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित और हौथी विद्रोहियों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डाला। संयुक्त राष्ट्र के दूत ने कहा, अधिकांश यमनियों ने संघर्ष के बारे में जोर देते हुए कहा कि युद्ध समाप्त करना सबसे सरल और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यापक लोकप्रिय आम सहमति शांति के पक्ष में है। लोग हमेशा से शांति के समर्थक रहे हैं। ग्रिफिथ्स ने कहा कि सुरक्षा परिषद की एकता एक संघर्ष विराम के समर्थन में कई प्रमुख देशों जैसे ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से कूटनीतिक एकमत और विशिष्ट कार्यों द्वारा प्रबलित है। उन्होंने कहा, देशव्यापी युद्ध विराम इसका मतलब है कि बंदूकें शांत हो जाएंगी और सड़कों पर रखे अवरोध धीरे धीरे खोल दिए जाएंगे। जरूरी वस्तुओं की गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी, फिर बिना बाधा के बच्चे स्कूल आना जाना शुरू करेंगे और श्रमिक अपने काम की जगह पर लौट पाएंगे। ग्रिफिथ्स ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट यमन की स्थिति कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के साथ तेज हो गई है, जो आबादी को एक नई गति के साथ मार रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक लोकमार्क ने उनके साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा, कोविड संक्रमण की इस नई लहर ने केवल 6 हफ्तों में पुष्टि मामलों की संख्या को 2 गुना कर दिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।